हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय 15 श्लोक संख्या 6, 7 एंड 8। इस आध्यात्मिक ज्ञान में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगल आचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय, नमः पंकजमालिनी, नमः पंकजनेत्राय, नमस्ते पंकजांग्रये। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांतम् अद्वैव मे विशतु मानसराज हंसा। प्राणाप्रयाण समये कफवात पित्तये कंठा विरोधन विदु स्मरणं कुतस्त्व। आराध्यो भगवान् ब्रजेश तनयस् तत्थाम वृंदावनम् रम्या काचिदुपासना व्रजवधु वरकीनया कल्पिता। श्रीमद्भागवतम् प्रमाणममलम् प्रेम पुमर्थो महा श्रीचैतन्य महाप्रभुर्म्यतमिदम् तत्राग्रह न परः। करारविन्दे न पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरि मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। जिह्वे बिभस्वा मृतुमेतदेव गोविंद दामो धर्माधवेति। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुवन्ति देवेस्तवे। वेदी सांगपत क्रमोपनिषदि गायन्ति यं सामगा। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदो सुरासुरगणा। देवाय तस्मे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायामुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती युद्धम श्लोके भक्तिरभवति नैष्ठिकी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथ राशि मद्भागवत महापुराण की जय हो। पहला स्कंद अध्याय 15, जिसका शीर्षक है पांडवों का सामयिक प्रस्थान। जैसे कि हमने सुना कि अर्जुन जब द्वारिका से वापस आए तो युधिष्ठिर महाराज उनसे बहुत सारे संशय प्रकट करते हैं कि क्या अर्जुन तुम्हारे दुख का कारण ये हो सकता है, ये बहुत सारी चीजें पूछी और अंत में कहा कहीं ऐसा तो नहीं है कि नारद मुनि का वाक्य सत्य हो गया और भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम से चले गए, तुम्हारा घनिष्ठ मित्र तुम्हें छोड़कर चला गया, क्या इसी के कारण दुखी हो। अर्जुन बोल नहीं पा रहे थे, गला रुद्ध रहा था, नेत्रों से अश्रु साफ करते हुए बड़े ही कठिनाई से भगवान की लीलाओं को, भगवान ने उनके ऊपर जो उपकार किए उनका स्मरण किया और उसके बाद बोलने की कोशिश करने लगे। बहुत ही कठिनाई से अर्जुन ने कहा, वंचितो हम महाराज हरिणा बंधु रूपिणा येन मे पहृतं तेजो देव विस्मापनं महत्। अर्जुन ने कहा, हे राजन, आप सही समझे हो, वंचितो हम महाराज हरिणा बंधु, वो भगवान जो मेरे बंधु थे, मेरे मित्र थे, जो हर बात में मेरी सहायता करते थे, हर जगह पर जिनने मेरा साथ दिया, उनसे आज मैं वंचित हो गया हूँ। ये न मैं पहृतम तेजम, और इसी के कारण मेरा तेज समाप्त हो गया है। वह शक्ति जो देव विस्मापनम महत, वह शक्ति जो देवताओं को भी आश्चर्य में डाल देती, वह शक्ति समाप्त हो गई, क्योंकि वो सब भगवान ही का था और जब भगवान ही नहीं रहे, अब मेरे पास कुछ नहीं रहा। इसी बात को आगे कहते हैं, श्लोक नंबर 6, यस्य क्षण वियोगेन लोको ह्य प्रियदर्शन उक्तेन रहितो हेश मृतकः प्रोच्यते यथा। यस्य क्षण वियोगेन लोको ह्य प्रियदर्शन उक्तेन रहितो हेश मृतकः प्रोच्यते यथा। यस्य क्षण वियोगेन, वह कृष्ण क्षण जिनके साथ एक क्षण का भी वियोग हो जाए, यदि एक क्षण के लिए भी हम उनसे अलग हो जाते हैं, जब मैं कृष्ण से एक क्षण के लिए अलग जाता हूँ, अलग हो जाता हूँ, तो लोको ह्य अप्रिय दर्शन, ये सारा संसार, ये सारा ब्रह्मांड जो है, वो प्रत्येक वस्तु मुझे कुछ भी अच्छी नहीं लगती, अप्रिय दर्शन, सब कुछ प्रतिकूल लगता है, ऐसा लगता है पूरा ब्रह्मांड जो है वो हमारे खिलाफ हो गया है, कुछ अच्छा नहीं लगता। एक क्षण के लिए भी यदि भगवान से दूर हो जाता है जीव, क्योंकि जीव वास्तव में भगवान से प्रेम करता है, और यदि कृष्ण से उसका वियोग हो जाए, वास्तव में यहाँ पर हमें अर्जुन बता रहे हैं कि इस भौतिक जगत में आकर दुखी होने का कारण केवल इतना है कि जीव अपने आप को कृष्ण से विलग कर देता है। कृष्ण बहिर्मुखा जीव भोगवांछा करे, भगवान से बहिर्मुख होकर जीव भोग की इच्छा करता है, तो उसी के कारण उसका ये भौतिक जगत का सारा कष्ट इसी के कारण है कि जीव भगवान से अलग हो गया है। तो यहाँ पर यही बात बता रहे हैं अर्जुन, यस्य क्षण वियोग है ना, जिसके एक क्षण का भी जब हम उनसे दूर हो जाते हैं तो लोको हर प्रिय अप्रिय दर्शन, ये पूरा संसार जो है वो दुखदायक हो जाता है। उपथेन रहितो येष, उपथेन का मतलब होता है जीवन, जीवन जो है वास्तव में यह शरीर जी क्यों रहा है, क्योंकि इसके अंदर जीवन है, इसके अंदर आत्मा है, लेकिन जैसे ही शरीर से आत्मा निकल जाती है तो शरीर कैसे मृतकपन कर रह जाता है। तो उसी तरह से कहते हैं उपतेन रहितो येष मृतक प्रोच्यते यथा, जिस प्रकार अगर शरीर से प्राण निकल जाए तो शरीर भी मृतक हो जाता है, तो उसी तरह से जीवन से यदि कृष्ण निकल जाए तो यह जीवन भी किसी कार्य का नहीं रहता। संत बहुत सुंदर कहते हैं, जिन हरि कथा हृदय नहीं आनी, जीवन शव समान सो प्राणी। वह जीव जो भगवान की कथाओं को श्रवण नहीं करता, वास्तव में भगवान और भगवान की कथाओं में श्रीमद् भागवतम में कोई अंतर नहीं है, तो जब हमारे जीवन में भागवतम है अर्थात भगवान की कथाओं को श्रवण कर रहे हैं, तभी समझो हमारा जीवन संतुष्ट हो सकता है। वरना जिस तरह अर्जुन कह रहे हैं, यस्य क्षण वियोगे न लोके ह्यप अप्रिय दर्शन, कि अप्रिय दर्शन हो जाता है, लोक संसार जो है वो हमारे लिए अमंगल हो जाता है, उसी तरह यदि भगवान की कथा जीव के जीवन से निकाल दी जाए तो फिर ये जीवन भी मृतक हो जाता है, अमंगल हो जाता है। इसीलिए हमें सदैव भगवान की, इसी कहा जाता है नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया, कंटिन्यूस भागवतम को श्रवण करने की हृदय के अंदर इच्छा होनी चाहिए। यदि हम भगवान की कथाओं से दूर हैं तो ऐसे ही हैं जैसे वास्तव में हम जी रहे हैं, लेकिन जीवन शव समान सो वो शव के समान है, मृतक देह की तरह है, जिसमें कोई किसी का को स्वार्थ नहीं है। तात्पर्य शिव रूपा जी कहते हैं, वास्तव में जीव के लिए भगवान से बढ़कर अन्य कोई प्रिय नहीं होता। भगवान अपना विस्तार अपने असंख्य अंशों द्वारा स्वांश तथा विभिन्न अंश रूपों में करते हैं। कुछ भगवान के स्वांश होते हैं, कुछ अंश होते हैं, कुछ विभिन्न अंश होते हैं, तो भगवान विस्तार करते हैं इस तरह। आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, परमात्मा भगवान का स्वांश है, स्वांश है मतलब भगवान का निजी अंश है परमात्मा, भगवान के फेस हैं, जैसे हमने पढ़ा वदन्ति तत्त्व विदस तत्त्वम यश ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दति, तो भगवान के फेस हैं, ये भगवान के स्वांश हैं, जबकि सारे जीव भगवान के विभिन्न अंश हैं। भगवान कहते हैं, अपरेयम इतस्त्वन्नाम प्रकृतिम विद्धि में परा जीव भूतान महाबाहो ययेदम धारयति जगत, ये जो जीव है वो मेरी परा प्रकृति है, भिन्ना प्रकृति इसको कहा गया, भिन्ना मतलब वो जीव जो है वो भगवान का भिन्न अंश है, वो स्टार्ट से ही भगवान का एक अलग पार्ट एंड पार्सल जिसको कहा जाता है, अलग अंश है। और आगे जिस प्रकार भौतिक शरीर में जीव महत्वपूर्ण होता है, ये जो भौतिक शरीर है उसके अंदर प्राण महत्वपूर्ण होते हैं ना, आत्मा महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि जीव के बिना शरीर की कोई शरीर का कोई मूल्य नहीं होता है। अगर आत्मा निकल जाएगी तो शरीर को तो जला दिया जाएगा या दफना दिया जाएगा या चील कौओं को खिला दिया, उसकी कोई महत्व नहीं है। उसी तरह परमात्मा के बिना जीव की कोई पूर्व स्थिति नहीं है। अगर परमात्मा को हटा दिया जाए तो आत्मा भी किसी काम की नहीं होगी। इसी प्रकार ब्रह्म या परमात्मा को भगवान कृष्ण के बिना प्रवेश अधिकार नहीं है। ब्रह्म और परमात्मा जो है वो भगवान के ही भिन्न ये स्वांश हैं। तो भगवान कृष्ण के बिना इनका कोई अधिकार नहीं है। कृष्ण के ही द्वारा परमेश्वर को कृष्ण के द्वारा परमात्मा को सत्ता मिलती है। कृष्ण ही जो ब्रह्म है ना उसका भी आधार है। भगवान कहते हैं ब्रह्मण्यो ही प्रतिष्ठा, ये जो ब्रह्म है उसका आधार भी मैं हूँ, परमात्मा का भी आधार मैं हूँ। तो यदि भगवान कृष्ण का आधार उनको नहीं मिलता तो परमात्मा और ब्रह्म का भी कोई मूल्य नहीं है। और श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं इसकी विशद व्याख्या भगवद गीता में की गई है, ये सब एक दूसरे से परस्पर सन्निध है या अन्योन्यथा अन्योन्य आश्रित है, एक दूसरे पर आश्रित है। अंततः भगवान ही आश्रय तत्व है। भगवान कहते हैं सर्वस्य चाहम हृदि सन्विनिविष्टो मत्तः स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च वेदेश सर्वेर अहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव, मैं ही वेदों का रचयिता हूँ, मैं ही वेदों का जन, और जो कुछ तुम पढ़ लो ज्ञान जितना अर्जित कर लो तो उन सारे ज्ञान के द्वारा यदि कोई लक्ष्य है तो वो मुझे जानना है, मुझे जानो, मेरी रियलिटी को जानो, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ, मैं ही प्रत्येक जीव के हृदय में बैठा हुआ और मैं ही गोलोक वृंदावन धाम में बैठे हुए मया अध्यक्षेण प्रकृति, इस पूरी प्रकृति को चला रहा हूँ। तो अंततः भगवान ही आश्रित है, आश्रय तत्व है। इसलिए भगवान भगवद गीता में बहुत ही क्लियर स्टेटमेंट देते हैं, अहम सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्वं प्रवर, अहम सर्वस्य, सर्वस्य शब्द बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, मतलब कुछ नहीं रह जाता, ना कोई भौतिक जगत में और ना ही कोई आध्यात्मिक जगत में ऐसी वस्तु है जिसका प्रभु भगवान कृष्ण न हो, चाहे वो परमात्मा हो, चाहे वो ब्रह्म हो, या चाहे वो कोई आध्यात्मिक देवता हो, या ब्रह्मा जी हो, या इंद्र हो, या कोई भौतिक शक्ति हो। भगवान कहते हैं अहम सर्वस्य प्रभु, मैं सबका प्रभु हूँ। तो यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं अंततः भगवान श्री कृष्ण ही आश्रय तत्व है, अतएव हर एक वस्तु के लिए जीवन स्वरूप है। अगर उसने अपना अपनी शक्ति उस वस्तु से निकाल दी, चाहे वो ब्रह्म हो, चाहे परमात्मा हो, चाहे देवता हो, चाहे जीव हो, भगवान उससे विलग हो गए तो फिर वो सब निर्जीव हो जाएंगे। हर एक वस्तु के लिए वही जीवन स्वरूप है, भगवान के साथ आपका लिंक ही आपको सजीव बनाता है। अगर वो निकल गए तो कुछ नहीं रह जाता जीव के पास। इसलिए सदैव हमें भगवान के साथ जुड़ा रहना चाहिए, भगवान के नाम के द्वारा, भगवान की कथाओं के द्वारा। क्योंकि अर्जुन कह रहे हैं यस्य क्षण वियोगेन लोको ये अप्रिय दर्शन, ये सारा संसार जो है अप्रिय लगने लगता है जब हम भगवान से दूर हो जाते हैं। तो आगे अर्जुन भगवान की उन समस्त कृपाओं को याद कर रहे हैं जो अर्जुन के जीवन में भगवान ने जिस तरह से उनके ऊपर कृपा की, किस तरह से भगवान ने हर जगह पर उनका साथ दिया, उसके विषय में याद करते हुए कहते हैं अर्जुन कहते हैं यत् संशया त्रुपदगेहमुपाकथानां राज्ञां स्वयंवर मुखे स्मर दुर्मदानां तेजोहितं खलु मया विहतश्च मत्स्य सज्जीकृतेन धनुषा दिगता च कृशा यत् संशया त्रुपदगेहमुपगतानां राज्ञां स्वयंवर मुखे स्मर दुर्मदानां तेजोहितं खलु मया विहतश्च मत्स्य सज्जीकृतेन धनुषा दिगता च कृशा। अर्जुन कहते हैं यत् संशयात्, संशयात का मतलब होता है जिनके बल से, यत् यानी वही भगवान है, वही कृष्ण ही तो है, जिनके बल से द्रुपद गेह, गेह कहते हैं घर को, द्रुपद के घर में उपागतानाम सभी एकत्रित राजा हुए थे, राज्ञां स्वयंवर मुखे जितने भी स्वयंवर में राजा आए थे वो सब कैसे थे, स्मर दुर्मदानाम वो सब दुर्मद थे, कामुक थे, कामुक विचार वाले थे, वो द्रौपदी को हत्याना चाहते थे, परंतु तेजो हृतम खुलु मया भी हतश्च मत्स्य, तेज यानी भगवान के बल से ही हृतम उनका तेज हर लिया गया। वो सारे राजा जो थे वो बहुत ज्यादा तेजस्वी थे वो सब, लेकिन क्योंकि वो स्मर दूर मदाना, वो बहुत ज्यादा कामुक थे, इसलिए भगवान ने अपने बल से उन सबका तेज खत्म कर दिया और मेरे द्वारा मुझे भगवान की कृपा प्राप्त हुई। और माया अभिहित मत्स्य, मेरे द्वारा भगवान के कारण, भगवान के बल से मेरे द्वारा मछली को निशाना बन गया। और सज्जी कृते धनुष धनुषादि गता च कृष्ण, और मैंने भगवान की कृपा से धनुष पर बाण चलाया और वो बाण सीधा मत्स्य की आंख पे लगा। और कृष्ण और अधिगता च कृष्ण, यानी मैंने कृष्णा, कृष्णा द्रौपदी का नाम है, बोला फिर मैंने कृष्णा को प्राप्त कर लिया। ये मेरा बल नहीं था, वास्तव में मेरे अंदर कोई शक्ति नहीं थी, ये तो कृष्ण की कृपा थी, उन्हीं की कृपा से ये प्राप्त कर सका मैं, वरना मेरे अंदर कोई योग्यता भी नहीं थी। श्री प्रभुपाद की जय हो। अनुवाद देखिए, उनकी कृपा में शक्ति से मैं उन समस्त कामोन्मत राजकुमारों को परास्त कर सका जो राजा द्रुपद के महल में स्वयंवर के अवसर पर एकत्रित हुए थे। अपने धनुष बाण से मैं मत्स्य भेदन कर सका और द्रौपदी को ब्याह सका। श्री प्रभुपाद जी अत्यंत सुंदर रीति से वह घटना में बताएंगे कि किस तरह से अर्जुन ने द्रौपदी के स्वयंवर में मत्स्य को भेदा था। श्री प्रभुपाद की इच्छा हो। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, द्रौपदी राजा द्रुपद की सर्व सुंदरी कन्या थी, और जब वह तरुणी हुई, यानी जब वो जवान हुई, तो प्रायः समस्त राजकुमार उससे विवाह करने के इच्छुक थे, लेकिन द्रुपद महाराज ने अपनी पुत्री अर्जुन को ही देने का निश्चय किया। अतएव उन्होंने एक अद्भुत उक्ति सोची। मकान की छत से एक चक्र के भीतर एक मछली लटका दी गई, जो द्रुपद राजा का महल था ना, छत पर एक मछली लटका दी गई, और शर्त यह थी कि हर राजकुमार को चक्र से होकर मछली की आंख भेदना होगी, उसे लक्ष्य की ओर नहीं देखने दिया जाएगा। जमीन पर एक जल पात्र था, तो श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि शर्त यह थी कि हर राजकुमार को चक्र से होकर मछली की आंखें भेदनी होंगी, यानी कि तीर मछली की आंख पर लगाना होगा, उसे लक्ष्य की ओर नहीं देखने दिया जाएगा, ऊपर नहीं देख सकता। जमीन पर एक जल पात्र था, उसमें लक्ष्य था। अभी एक जमीन पर एक ट्रक में पानी भर के रखा था और उसमें आपको देखना था, मतलब जो भी चक्र भेदने के लिए आया था उसको जमीन में देखना था, जल पात्र में, और जो मछली ऊपर घूम रही थी उसकी आंख पट्टी लगाना था, तथा चक्र का प्रतिबिंब पड़ रहा था उसमें, और पात्र के हिलते हुए जल में पड़ने वाले प्रतिबिंब को देखकर लक्ष्य साधना था। महाराज द्रुपद यह भलीभांति जानते थे कि यह कार्य अर्जुन या फिर कर्ण ही सफलतापूर्वक संपन्न कर सकते थे, क्योंकि अर्जुन सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर था, वो द्रोणाचार्य का शिष्य था, और कर्ण भी सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर था और वो परशुराम जी का शिष्य था। तो महाराज द्रुपद जानते थे कि इन दो ने अगर कोशिश की तो ये दोनों सफल हो सकते हैं, फिर भी वे अर्जुन को ही अपनी पुत्री सौंपना चाहते थे। जब उस राज दरबार में द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न ने सभी राजकुमारों से अपनी युवती बहन का परिचय कराया, तो उस समय कर्ण भी उपस्थित था, लेकिन द्रौपदी ने अत्यंत चतुरतापूर्वक अर्जुन के प्रतिद्वंद्वी कर्ण को हटाने के लिए अपने भाई से इच्छा व्यक्त की कि वह क्षत्रिय राजकुमार को ही स्वीकार करेगी, वैश्य तथा शूद्र क्षत्रिय की तुलना में कम महत्वपूर्ण होते हैं। कर्ण एक शूद्र बड़े के पुत्र के रूप में विख्यात था, इस तर्क के आधार पर द्रौपदी ने उसे अस्वीकार कर दिया। जब दरिद्र ब्राह्मण के वेश में अर्जुन ने मत्स्य वेद कर लिया तो सबों को आश्चर्य हुआ, और सबों ने, विशेषतया कर्ण ने उसे घनघोर युद्ध किया। अर्जुन से सबने युद्ध करने की कोशिश की, लेकिन कर्ण ने, किंतु भगवान श्री कृष्ण की कृपा से अर्जुन इस युद्ध में सफल हुआ और उसका द्रौपदी या कृष्ण से विवाह हो गया। जिन भगवान की शक्ति से ही अर्जुन इतना शक्तिशाली था, उन्हीं की अनुपस्थिति में इस घटना का स्मरण करके वह शोक कर रहा था। आज जब भगवान नहीं है तो अर्जुन भगवान की उस कृपा को याद कर रहे हैं कि ये सारा बल मेरा नहीं था, बल्कि क्योंकि कृष्ण मेरे साथ थे तभी ही मैं ये सब कर पाया। आगे अर्जुन कहते हैं, यत्सौनिदावहं खांडवमग्नयेदाम इन्द्रं च सामरगणं तरसा विजित्य लब्धा सभामय कृताद्भुत शिल्प माया दिग्भ्यो हर निरपतयो बलिमध्वरेते। यत्सौनिदावहं खांडवमग्नयेदा इन्द्रं च सामरगणं तरसा विजित्य लब्धा सभामय कृताद्भुत शिल्प माया दिग्भ्यो हरन्नृपतयो बलिमध्वरेते। यत्सौनिधावहमुखाण्डवमाग्नयेदाम् इन्द्रं च सामरगणं तरसा विजित्य लब्धा सभामय कृताद्भुत शिल्प माया दिग्भ्यो हरन्नृपतयो बलिमध्वरेते। शब्दात् यत्सौनिधावहम्, यत्सौनिधौ मतलब वो भगवान जिसकी सानिध्य के कारण, जिसके पास होने के कारण अहम, अहम यानी मैं, और अहम के नीचे ऊ की मात्रा लगी हुई है ना, यत्सौनिधावहम ऊ का मतलब आश्चर्यचकित शब्द कि मेरे जैसा निगरणीय व्यक्ति जिसकी कोई औकात नहीं है उसने क्या किया। खांडवम, खांडव वन था एक, श्री रूपा जी अच्छे से समझाएंगे, जो स्वर्ग के राजा इंद्र के द्वारा सुरक्षित था। वो खांडव अग्नय अग्निदेव अग्निदेव को उदाम यानी प्रदान किया गया था। इंद्र ने वो अग्निदेव को वो दे दिया था कि चाहो तुम उसमें पहले उसको जलाओ। तो आगे अर्जुन कह रहे हैं, इंद्रम च सामरगणम तरसा विजित्य। इंद्रम च सामरगणम यानी इंद्र को और दूसरे जितने भी अमर देवी देवता थे उनको तरसा विजित्य अपने कौशल से मैंने जीत लिया। ये मेरी कोई इसमें करामत नहीं, मेरा इसमें कोई कौशल नहीं था, मेरी कोई योग्यता नहीं थी, ये तो भगवान की कृपा, यत् सौनिध, ये भगवान की कृपा थी जिसके कारण मैं इंद्र को और जितने भी देवी देवता हैं उनको जीत सका। लब्धा सभामय कृताद्भुत शिल्प माया, लब्धा यानी प्राप्त हुआ, क्या सभा, एक अत्यंत ही सभा भवन, अत्यंत ही आश्चर्यजनक सभा भवन उनको प्राप्त हुआ। माय कृतात्, जो मय दानव था जिसको अग्नि देवता जला रही थी, जो खांडव वन में रहते थे, लेकिन अर्जुन ने क्योंकि उसकी सहायता की थी तो उसकी बदली में माय दानव ने अद्भुत शिल्प माया, वो बहुत ही अद्भुत कार्यकलाप करता था, जैसे राक्षस लोग बहुत ही अद्भुत कार्यकलाप करते हैं तो फिर वो भी बहुत ही जादूगरी जानता था, तो उसने इतना सुंदर उनको महल बना के दिया था पांडवों को। आगे कहते हैं, दिग्भ्यो नृप तयो बलि में, दिग्भ्यो का मतलब होता है सारे जितने भी राजा थे, जितने भी दिशाओं में जितने भी राजा थे, हरण, हरण का मतलब होता है एकत्रित होकर, नृपतया सारे राजकुमार बलिम, वो सारे आपको भेंट करने लगे, वो सारे आपके लिए भेंटे लेकर आने लगे, तो सबने जब आपका मतलब आश्चर्य स्वीकार किया, आपको राजसूय यज्ञ किया, आपने अश्वमेध यज्ञ किया, तो सबने आपकी सहायता की, तो इसमें हमारी कोई योग्यता नहीं थी, ये हम सब तभी कर सके क्योंकि कृष्ण हमारे साथ थे, और आज कृष्ण नहीं है तो ऐसा लगता है जैसे हमारा पूरा जीवन ही वीरान हो गया है। अनुवाद देखिए, अर्जुन कह रहे हैं, चूंकि वे मेरे निकट थे अतः वो मेरे लिए अत्यंत ही कौशल पूर्वक स्वर्ग के शक्तिशाली राजा इंद्र को उनकी देव पार्षदों सहित जीत पाना संभव हो सका और इस तरह अग्निदेव खांडव वन को विनष्ट कर सके। उन्हीं की कृपा से मय नामक असुर जलते हुए खांडव वन से बच सका। इस तरह हम अत्यंत ही आश्चर्यमय शिल्प कला वाले सभा भवन का निर्माण कर सके, जहां राजसूय यज्ञ के समय सारे राजकुमार एकत्रित हुए और इस और उसके सॉरी एकत्रित हो सके और आपको आदर प्रदान कर सके। श्रील प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर रीति से ये सारी वार्ता को बताएंगे। श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, मैं दानव खांडव वन का निवासी था। अब खांडव वन कौन सा था? देखो, जब पांडव बड़े हुए तो उनको भी राज्य दिया गया। धृतराष्ट्र ने हस्तिनापुर को दो भागों में कर दिया, लेकिन जो बिल्कुल उजाड़ था, जो एक वन था, हस्तिनापुर एक बहुत ही सुंदर एरिया था, लेकिन उसका एक पार्ट था बिल्कुल जो उजाड़, एक वीरान जगह थी, खांडव वन था, पूरा वन बना हुआ था, वो पांडवों को दिया और कहा कि ये तुम्हारी कर्म भूमि है, जाओ इसको बसाओ। अब इसमें जाकर तुम लोगों को रहना है, किस तरह से आप अपना राजमहल बनाते हो, जाके करो जो करना है करो। तो उस खांडव वन में एक मय दानव रहता था, राक्षस रहता था। तो उस अभी क्या था कि खांडव वन में बहुत सारे वो वृक्ष थे, उन सबको जलाना था क्योंकि वो सब काम के नहीं थे और वहां पर जगह खाली होगी तो महल बनेगा ना। तो उस अग्नि देवता को ये आज्ञा हुई कि इनको सारे इस खांडव वन को जलाना है। अब जब अग्नि देवता उस खांडव वन को जला रही थी तो मय दानव भी उसी में रह रहा था, तो वो मय दानव भी जल जाता ना। तो यहाँ पर श्री रूपा जी बता रहे हैं, किंतु जब खांडव वन में आग लगा दी गई तो उसने अर्जुन से रक्षा करने के लिए याचना की। फिर वो अर्जुन के पास आया, बोला मेरी रक्षा करो, अतः अर्जुन ने उसकी जान बचाई। फलस्वरूप वह अत्यंत कृतज्ञ था। उसने बदला चुकाने के लिए पांडवों के लिए एक आश्चर्यजनक सभा भवन तैयार कर दिया, जिसके प्रति सभी देशों के राजकुमार अत्यंत ही आकर्षित थे। उन्होंने पांडवों की अलौकिक शक्ति का अनुभव किया और सबों ने बिना ईर्ष्या या झिझक के महाराज को भेंट प्रदान की। अब जब इतना सुंदर उनका सभा भवन था तो सबको ऐसा लगा कि ये वाकई में बहुत ही महान राजा हैं और सबने उनके साथ मित्रता की, उनको भेंटें प्रदान की। असुरों में भौतिक आश्चर्य उत्पन्न करने की अद्भुत तथा अलौकिक शक्ति पाई जाती है। अब श्रील प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर बात बताएंगे, ध्यान से सुनिएगा। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि असुर जो होते हैं ना, उनके अंदर अद्भुत अलौकिक शक्ति पाई जाती है, वो बहुत आश्चर्य वाले कार्य करते हैं। अभी हमारे इस कलयुग में तो असुर नहीं है, तो कौन है जो आश्चर्य वाले कार्य करते हैं और दुनिया को हैरान कर देते हैं, उसके बारे में श्री प्रभुपाद जी बताते। लेकिन वे समाज के लिए उपद्रवकारी होते हैं, मतलब वो समाज में ऐसे अजीब आश्चर्य करते हैं और समाज को उपद्रव बना देते हैं। जीव अपना लक्ष्य बना देता है कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, इसलिए उपद्रव करते हैं। आधुनिक असुर तो भौतिक विज्ञानी है, श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं, जो साइंटिस्ट है ना, जो भौतिक विज्ञानी है, वो आजकल के असुर है, जो समाज में उत्पात मचाने के लिए किसी न किसी आश्चर्य को जन्म देते हैं। कभी कोई एटम बम बना देते हैं, कभी कौन सा बम बना देते हैं, कभी क्या करते हैं, ये उत्पात मचाते रहते हैं, कुछ न कुछ आश्चर्यजनक चीजें बनाते रहते हैं। उदाहरणार्थ परमाणु हथियारों के निर्माण से मानव समाज में कुछ भगदड़ मची है। मैं भी इसी तरह का भौतिकवादी व्यक्ति था, असुर था। वह ऐसे आश्चर्यजनक वस्तुएं तैयार करना जानता था, फिर भी भगवान श्री कृष्ण उसका वध करना चाह रहे थे। भगवान ने वो बहुत उत्पात कर रहा था, इसे भगवान ने सोचा इसको मार देता हूँ। इसे वन में आग लगा दी थी उन्होंने, तो फिर ऐसा था कि वो भी मर जाता, भगवान की भी इच्छा थी वो मर जाता, लेकिन वो नहीं मरा। इसका कारण जानते हैं आप? क्योंकि उसने भगवान के भक्त की शरण ली थी, अर्जुन की शरण में गया कि अर्जुन मुझे आप बचाइए। तो जब अग्नि तथा भगवान कृष्ण का चक्र दोनों ही उसका पीछा कर रहे थे तो उसने अर्जुन जैसे भक्त की शरण ग्रहण की और उसने भगवान श्री कृष्ण की क्रोधाग्नि से उसे बचा लिया, अर्जुन ने बचा लिया, क्योंकि अर्जुन भगवान का भक्त है। भले कृष्ण की इच्छा थी उसको मारने की, लेकिन जिसकी रक्षा भगवान का भक्त करता है, इसे भगवान कहते हैं कौन्तेय प्रति जाने हा नवे भक्त प्रणश्यति। मैं भले अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दूं, लेकिन मेरे भक्त ने जिसको शरण दे दी उसको कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि भक्त की प्रतिज्ञा मैं कभी भी छूटने नहीं दूंगा। अतः भगवान के भक्त भगवान से अधिक दयालु होते हैं और भक्ति में भक्त की दया का महत्व भगवान से भी अधिक होता है। भक्त की दया प्राप्त हो जाना, इसलिए गुरु की कृपा से कृष्ण मिलते हैं। जब गुरु हम पे कृपा करता है ना, कृष्ण की कृपा से कृष्ण नहीं मिलते हैं। कृष्ण किसी पर कृपा कर दे तो उसे किसी भक्त से मिला देते हैं, और भक्त की कृपा से ही हमें भगवान प्राप्त होते हैं। जब अग्नि तथा भगवान दोनों ने देखा कि असुर को अर्जुन ने शरण दी, तब उन्होंने पीछा करना बंद कर दिया। इस असुर ने अर्जुन के प्रति कृतज्ञता अनुभव करते हुए अर्जुन की सेवा करनी चाहिए, लेकिन अर्जुन ने बदले में कुछ भी लेने से इनकार कर दिया। लेकिन भगवान को पता था कि ये बहुत ही अद्भुत चीजें बनाता है, तो किंतु भगवान कृष्ण माया दानव से प्रसन्न हुए, क्योंकि उसने भक्त की शरण ग्रहण की थी। अतएव उन्होंने उसे कहा कि राजा युधिष्ठिर के लिए वह एक अद्भुत सभा भवन तैयार कर दे। इस तरह भक्त की कृपा, भक्त की दया से भगवान की कृपा प्राप्त होती है, और भगवान की कृपा से भगवत भक्त की सेवा करने का अवसर प्राप्त होता है। अगर हमें किसी भक्त की सेवा करने का अवसर मिले ना, किसी शुद्ध वैष्णव की सेवा करने का अवसर मिले, तो हमें दिल से यही सोचना चाहिए कि आज भगवान की कृपा हुई है मुझ पर। वास्तव में हर किसी के बस की बात नहीं है। धन सबके पास होता है और सबका खर्च भी होता है। किसी का शराब पीने में खर्च होता है तो किसी का मेडिसिन लेने में, लेकिन यदि किसी भक्त की सेवा कर सके ना हम, धन से, तन से, या किसी भी वाणी से, किसी भी तरीके से यदि शुद्ध भक्त की सेवा कर सके ना, तो समझना हमारा जीवन सार्थक हो गया। क्योंकि ये शुद्ध भक्त की सेवा जो है वो हमें भगवान की कृपा से प्राप्त होती है। इसे यही बात श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पर बता रहे हैं कि भक्त की दया से भगवान की कृपा प्राप्त होती है, और भगवान की कृपा से भगवत भक्त की सेवा करने का अवसर मिलता है। और जब भक्त की सेवा करने का अवसर मिल जाए ना, भक्त का सानिध्य मिल जाए, तो भगवान किधर नहीं जा सकता। क्योंकि भगवान के लिए, भगवान स्वयं कहते हैं भक्तों के लिए, अहम भक्त पराधीना, जहाँ मेरे भक्त हैं मैं वहीं रहता हूँ, मैं अपने भक्तों के पराधीन रहता हूँ। श्री प्रभुपाद जी बताते हैं आगे कि भीमसेन की गदा भी मैदानव द्वारा ही दी गई भेंट थी। ये भीमसेन की जो गदा थी जिससे बड़े बड़े असुरों को मारते थे, एक मारते थे ना तो बस समझो वो बच नहीं सकता था। तो जरासंध इत्यादि जिनको मारा था, ये मैदानव ने दी थी। और आज अर्जुन याद कर रहा है कि ये सारी कृपा जो है वो हमारी योग्यता के अनुसार नहीं, कृष्ण की कृपा के अनुसार, क्योंकि कृष्ण हमारे साथ थे तभी ये सब कुछ संभव हो सका था। और आज हमारे साथ कृष्ण नहीं है तो पूरा संसार, पूरा ब्रह्मांड शून्य सा प्रतीत हो रहा है, जैसे आत्मा के बगैर शरीर हो जाता है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि पैर साथ रहेगा, और मेरे लिए प्रार्थना अवश्य कीजिएगा कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे से कर सकूं। हरे कृष्ण।